हमारे सम्मुख विराजमान हैं आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी, आप सभी माताएं उनका हाथ उठाकर स्वागत करेंगे एक हाथ की ताली बजाकर, एक हाथ की ताली। आप बाबा के अनन्य रतन जिन्होंने बहुत ही सौभाग्य प्राप्त किया साकार बाबा की कर्मातीत अवस्था को होते हुए देखा, वो अनुभव भी आपके सामने आदरणीय भाई जी शेयर करेंगे कि कैसे बाबा की कर्मातीत अवस्था हुई। आपने 1962 में इस विद्यालय के संपर्क में आई, लौकिक पढ़ाई में इंजीनियरिंग में मास्टर और अधिक शिक्षा पूरी कर 28 वर्षों तक ONGC में आप कार्यरत रहे। बिहार आसाम गुजरात के अनेक राज्यों सेवा केंद्रों की शुरुआत करने में आपका विशेष सहयोग रहा। 1996 में आप संपूर्ण रीति से समर्पित हुए। वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने ज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर 5 किताबें भी लिखी हैं, जैसे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ग्लोबल कॉपरेशन फॉर ए वर्ल्ड बेटर वर्ल्ड इत्यादि। आपने विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से आपको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उदाहरण के तौर पर 1992 में भारत नेपाल पर्यावरण कैंपिजन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की ओर से आपको पर्यावरण श्री इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप सुनेंगे आदरणीय मोहन सिंगल जी के द्वारा संबंधों में आते साक्षी व साथीपन की स्थिति, आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी।
ओम शांति। अभी कुछ देर पहले आप सब बहुत अच्छी अच्छी बातें स्वस्थिति से संबंधित सुन रहे थे, कैसे हमें अपनी स्वस्थिति बनानी है और कैसे संपूर्णता की ओर हमें प्रस्थान करना है। उसी के ही एक भाग रूप में संबंधों में आते साथीपन और साक्षीपन की स्थिति कैसे रहे। हम सभी विभिन्न संबंधों के अनुभवी हैं, सारे दिन में अनेक संबंधों में आते हैं, पारिवारिक संबंध है, सामाजिक और संबंध है, कार्य व्यवहार में आते हैं, दूसरे संबंध हैं, लेकिन विशेष करके जिनके साथ हमें रहना होता है उनके साथ आते हुए कैसे हम अपनी स्थिति को ऐसी बना के रखें कि हमारी स्थिति हमें और आगे बढ़ाने, कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाने, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनने में सहायक हो। बाप दादा ने हम बच्चों को जो अनेक ज्ञान के गहनों से श्रृंगार किया है उसमें कई बातें बताई हैं जो देखने में तो ऊपरी तौर पर तो थोड़ा डिफिकल्ट लगती हैं, क्योंकि कहीं कहीं विरोधाभास का अनुभव होता है। जैसे बाबा कहता है लव एंड लॉ का बैलेंस हो, अंतर्मुखता और बाह्य मुखता का भी बैलेंस हो। हम सब कर्म योगी हैं तो योग और कर्म का भी बैलेंस हो, आदि आदि बाबा ने अनेक बैलेंस बताए हैं। तो उसका समानता बैलेंस रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसी में से ही एक विशिष्ट है कि साथीपन और साक्षीपन की स्थिति, क्योंकि जहां संबंधों में आते हैं साथीपन का तो लौकिक रीति से हम सभी को अभ्यास है, लौकिक संबंध भी हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि आदि अनेकानेक संबंध हैं। लेकिन इनके साथ साथ बाबा ने कहा है साथीपन के साथ साथ साक्षीपन की स्थिति, ये बहुत गुह्य बात है। क्योंकि साक्षीपन की जो स्थिति है वो हमें संपूर्णता की ओर ले जाने में बहुत मदद करती है। तो साक्षी दृष्टा कैसे रहे, तो दृष्टा, जब साक्षी दृष्टा की हमारी स्थिति रहती है कैसे रहे, इसमें एक बात समझने, एक होता है दृश्य, जो हम दृश्य बाहर देखते हैं इन आंखों से, हम सभी जानते हैं संसार में चारों तरफ दृश्य है, प्रकृति के, संबंधों के, मनुष्यों के, पशु पक्षी जीव जंतु आदि। दूसरी चीज है दृष्टा, देखने वाली, देखने वाली दृष्टा कौन है, आत्मा, आत्मा देखती है। और तीसरी चीज है दृष्टि, दृष्टि अर्थात ये नेत्र जिसके माध्यम से हम देखते हैं, आत्मा देखती है इन दृष्टि आंखों के माध्यम से और चारों तरफ जो दृश्य देखती है, और इससे फिर हमारा बनता है दृष्टिकोण, एटीट्यूड। बस उस पर ही हमारे सारे जीवन की खुशी ना खुशी, सफलता असफलता, सबका आधार हमारे दृष्टिकोण पर है। और अगर हम साक्षी दृष्टा होकर के जीवन में अगर चलते रहते हैं तो जीवन में सदा सफलता होती रहती है, और जहां सफलता है वहां खुशी है, आनंद है, वहां पर सारी प्राप्तियां हैं, जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। जो जो बातें बाबा चाहते हैं वो सब उसके अंदर निहित हैं, यदि हम साक्षी दृष्टा की स्थिति से, जो आज का विषय है साथीपन और साक्षीपन, उसके आधार पे उसका अगर हम बैलेंस बना के रख के चल सकते हैं तो ये एक बहुत बहुत सहज बात हम सबके जीवन में होती है। फिर बाबा ने बताया है मुरलियों में बहुत सहज और बात कि बच्चों को निश्चय तो है, क्या निश्चय है बच्चों को, अपने में निश्चय है कि भाई हम आत्मा हैं, बाप में निश्चय है बाबा सर्वशक्तिवान है हमें बना ही देगा, बन ही जाएंगे हम। ड्रामा में भी निश्चय है, जो बीती सो ड्रामा, उस पर भी बाबा काफी बताते रहते हैं कि किस प्रकार से एक सेकंड में ही हम फुल स्टॉप लगा के चलते चले। तो ये तीन निश्चय तो हैं, और चौथा निश्चय बाबा किसमें कहते हैं, बाबा ने मुरलियों में कहा है ना, जो थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, किसमें निश्चय, बाबा ने कहा परिवार में निश्चय। क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं, हमारा अलौकिक परिवार है, हमारा ये संसार है, बस परिवार में रहते हुए सबके साथ संस्कार मिलाते हुए चलना, वो बाबा ने कई बार मुरली में कहा, उसमें बच्चे कई बार कठिनाई महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? जो आज का विषय की संबंधों में रहते हुए भी कैसे साक्षीपन साथीपन की स्थिति रहे, क्योंकि हर एक आत्मा, बाबा ने कहा है, बाबा राजाई भी की भी ये स्थापना कर रहा है, धर्म की स्थापना हो रही है, तो राजाई में जिसको जैसा पद पाना है उसके अनुसार ही उसका यहाँ पुरुषार्थ चलता है। तो इसलिए कोई पुराने हैं कोई नए हैं, सबका एक जैसा पुरुषार्थ नहीं है। कोई लास्ट सो फास्ट में जाने वाले भी हैं, कोई पुराने हैं उनका उतना तेज पुरुषार्थ कई कारणों से हो सकता है कि न भी हो। इसलिए कई बार किन्हीं आत्माओं को देखते हैं तो मन में प्रश्न होता है, अरे इन ये अभी तक भी ये 15 साल 20 साल पुराने हैं 10 साल पुराने हैं, अभी भी ये संस्कार अभी भी इस आत्मा में ऐसा है। और वो जब हम देखते हैं तो वो कई बार हमारे पुरुषार्थ की गति को थोड़ा कम कर देते हैं। इसके लिए बाबा ने क्या बताया है? बाबा ने कहा किसी भी आत्मा को देखो ना, एक तो ये देखो कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, भगवान ने चुना है उसे और हम उसे अपने बुद्धि के निर्णय दे रहे हैं कि ये आत्मा ऐसी है, लेकिन भगवान ने चुना है और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। वो आत्मा आज वर्तमान में हमें ऐसी किसी कारण से, किसी पुराने संस्कार के कारण वो दिख रही है, लेकिन वास्तव में वो आत्मा बहुत महान है, उसके द्वारा बाबा ने बहुत सेवा करानी है, समय पर उसका और प्रत्यक्षता होनी है, क्योंकि भगवान की चुनी हुई आत्मा है। इसीलिए हम कभी भी ना उसे केवल वर्तमान के दृष्टि से न देखें, उसे बाबा ने कहा है 3 कालों की दृष्टि से देखें। ये वही आत्मा है भगवान की चुनी हुई, आदि भगवान की रतन आत्मा है और ये अंत में संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाली है, आज भले वर्तमान में इस स्थिति में गुजर रही है। तो जो जैसे बाबा हम बच्चों को केवल वर्तमान की दृष्टि से नहीं देखता, भगवान के सामने बाबा के सामने जाए हमें 50 अवगुण होंगे, लेकिन अगर 1 गुण होगा ना, बाबा को वही नजर आता है और बाबा उसी गुण को उठा करके आत्मा में इतना बल और शक्ति भर देते हैं, आत्मा को महान बना देते हैं। तो एक तो कभी भी किसी को हम एक वर्तमान के ही दृष्टिकोण से न देखें, ये हमें और साक्षीपन की स्थिति में रहने में बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहता है कि हमें संसार में तो रहना है, प्रवृत्ति में रहना है, हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। बहुत संसार रहता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारी दुनिया की बातें इधर उधर जो देखते हैं, सब बातें सारा संसार हमारे अंदर रहता है। बाबा भी ये चाहता है हम बच्चों को, हम रहें संसार में, प्रवृत्ति में रहें, घर गृहस्थी नौकरी धंधा करें, लेकिन पूरा संसार हमारे अंदर ना रहे। बस हमारा अब दैवी जो संस्कार हमें बनाने हैं उसी की ही बस लात और तात लगी रहे। और बाबा क्या चाहता है हम बच्चों से? बाबा चाहता है टोटल हमारा पूरा का पूरा विकास। तो उसके लिए कहते हैं कि चरित्र का विकास संगठन में होता है और बुद्धि का विकास एकांत में होता है। हमें सारा करना है, बुद्धि का भी विकास करना है, चरित्र का भी विकास करना है, महान बनना है। तो इसीलिए बाबा कहता है संगठन में जब तक नहीं रहेंगे तो कैसे विकास होगा, क्योंकि संगठन में जब व्यक्ति रहता है उसका अपने पर बड़ा अटेंशन रहता है, भाई मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, ये सब मुझे देख रहे हैं। जैसे स्टेज पर होता है जब एक्टर एक्ट करता है उसका अटेंशन रहता है, तो संगठन में भी रहना है जिससे हमारे चरित्र का विकास, कोई कमी कमजोरी हमारी और प्रत्यक्ष न हो तो कर्म में नहीं आएगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। जब व्यक्ति अकेला होता है, एकांत होता है, तो उसके अंदर भले कमजोरियां आ जाती हैं और कमजोरी के वश कई कर्म हो जाते हैं। इसीलिए संगठन में व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है और एकांत में बुद्धि का विकास। इसलिए हमें एकांत में भी रखना है बुद्धि को और अपने को संगठन में भी रखना है। एकांत के लिए बाबा ने कहा है ना, अमृत वेले से लेकर जैसे सुबह का समय है उस समय वाचा में ना आए, बुद्धि को बस एकांत दे, मैं और मेरा बाबा, विचार सागर मंथन, अव्यक्त स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, ये सब हमारा चारित्रिक विकास के साथ साथ ये बुद्धि का एकांत जो है ये बहुत आवश्यक है। और जितना एकांत होगा विचार सागर मंथन भी चलेगा, और जितना जितना विचार सागर मंथन चलता रहेगा उतना उतना खुशी आएगी। क्योंकि ये मंथन, मंथन से जैसे मक्खन निकलता है दूध का मंथन करके, ऐसे ही ये ज्ञान की ऐसी ऐसी पॉइंट निकलेंगी जो अंदर ही अंदर खुशी आएगी वहां, और जो अपनी चीज होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसको देख करके खुशी होती है। दूसरे पे चाहे जितनी प्रॉपर्टी हो, करोड़ों की हो, उसे देखकर खुशी नहीं होगी उतनी। अपने पास जो भी संपत्ति होगी, जो चीज होगी, थोड़ी भी होगी, उसे देखकर व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो इसीलिए एक ये भी हम बैलेंस रख के जरूर चलते रहे। और साथ में क्या करना है, जितना जितना हम और आगे बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि हमारा सारा का सारा पुरुषार्थ उस एक घड़ी के लिए हो रहा है। किस घड़ी के लिए है? जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे, क्योंकि कहा गया है अंत मते सो गति। उस अंत समय के लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे कोई एक साल का है, चाहे कोई 75 साल पुरुषार्थ करते हो गए जो यज्ञ में है, लेकिन सभी का पुरुषार्थ उस अंतिम घड़ी में हमें और कोई याद ना आए, जैसा गायन है इच्छा मात्रम अविद्या का विस्मितामय का, बस ऐसे हमारे इच्छा से हम बस, हाँ बाबा अब हम संपूर्ण बन गए, अब हम बस आ रहे हैं आपके पास, जैसा ब्रह्मा बाबा ने भी किया। हमें वो सौभाग्य प्राप्त है जो हमने ब्रह्मा बाबा की वो स्थिति देखी, जब 18 जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर छोड़ा, अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, तब हम मधुबन में ही थे। और 2 दिन में 17 और 18 जनवरी को हमने बाबा की वो कर्मातीत अवस्था देखी जो हम सभी का लक्ष्य है। हम सभी का लक्ष्य वही है ना कि हम सब भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके सहजी फरिश्ते बन जाए, अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। तो वो बाबा का विशेष करके देखो, इतना बड़ा संगठन, पूरा यज्ञ का बोझा बाबा के ऊपर, बस सब होते हुए भी बाबा का अपने ऊपर इतना अटेंशन था शुरू से कि नहीं, मुझे कर्मातीत बनना है, स्वस्थिति अपनी स्थिति और सेवा विश्व सेवा, दोनों का बैलेंस बना के बाबा चलते रहे। हमें याद है जब हम पहले बाबा से मिलते थे 1962 में ज्ञान में आए, 62 से 68 तक कई बार बाबा से मिले होंगे, बाबा बस बहुत सेवा की बातें पूछते थे, काफी वर्णन करते थे, डायरेक्शन देते थे, साथ ही साथ पत्र भी बाबा के ऐसे होते थे कि बस पत्र के अंदर ही सारी की सारी डिटेल आ जाती थी, और बस सुदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, नूरे रतन आदि आदि सब टाइटल लिख के फिर बाबा नाम लिखा करते थे। हमें भी वो सौभाग्य है कि बाबा के कई पत्र हमारे पास अभी तक भी मौजूद है। तो बाबा, लेकिन ये सारी सेवा करते हुए भी बाबा का अपने ऊपर इतना ध्यान था पूरा, हम देखते थे पहले बाबा काफी समय देते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बाबा व्यक्त स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और हमने देखा बाबा सब चीजों से समेटते जा रहे थे। बस बाबा से जब मिलते थे बाद में 1968-69 में देखा, बस एक लाइन भी बोली, बस बाबा को सेवा का कुछ समाचार, बाबा कहते थे हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। इतना बुद्धि से सारा यज्ञ सेवा पूरा, कितना बड़ा यज्ञ का, एक एक बच्चे की पालना करना, इतने सब शुरू से लेकर रहते रहे, हर एक के संस्कार भी भिन्न भिन्न होते हैं, साकार मुरलियों में कितनी बातें आती हैं, आप सब भी सुनते होंगे, उस समय भी बाबा के सामने भी ये परिस्थितियां आती थी, लेकिन सब करते भी बाबा अपने स्वस्थिति के ऊपर। और बस ऐसा धीरे धीरे समय आता जा रहा था कि बाबा सब कुछ समेट करके जब बाबा से मिलने जाते थे, हमने देखा बस बाबा जैसे पार्टियों से मिलते थे, और बाबा ने इतना अभ्यास पक्का कर लिया था, जो हम सब भी पुरुषार्थी हैं, कि मैं आत्मा हूँ। वो डायरी भी रखी आप सबने सुनी होगी, बाबा ने पहले 1936 में जब ज्ञान में आए ना, बस ये पक्का किया मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला बाबा की लौकिक पत्नी का नाम जसोदा था, निर्मला बच्ची का नाम, नारायण बच्चे का, वो करके। तो उसका फायदा क्या हुआ कि बस जैसे ही हम सब ना बस बाबा से मिलने जाते थे, बाबा का हाथ यूं, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, आओ आओ, बस बच्चों को, और चुंबक की तरह, जैसे चुंबक की तरफ सुई खींच जाती है ना, ऐसे बस खींचते हुए जैसे हम बाबा की गोद में चले जाते थे, और ऐसा देह से एकदम न्यारे हो जाते, बिल्कुल विदेही हो जाते थे, भले थोड़े समय के लिए, लेकिन क्योंकि बाबा ने ऐसा पक्का किया था मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को बाबा देखते थे, उससे दूसरे को भी ना तुरंत आत्मा का भान होता था, देह को भूल जाता था। हम अपने को देखें कि हम सब भी, पहला लेसन ही हमारा आत्मा का, क्या मैंने ऐसा अभ्यास पक्का किया है कि जिसको भी मैं दृष्टि दूं, मेरे ऐसे वाइब्रेशन निकले पॉजिटिव, हमारे इतने सारा वो हो कि दूसरा भी अपने देह को भूल जाए। फिर जब भूल जाते थे, फिर बाबा देह में लाके धीरे धीरे ऐसे थपथपा के, फिर जैसे कि देह में लाते थे, और फिर टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, नाम पूछते थे, आदि आदि। तो फिर जब वो निकलता था, फिर पार्टी का दूसरा आता था, वो मिलता था, तीसरा आता था, चौथा आता था, इस तरह सब बाबा से मिला करते थे। और बाद में और जब और अंतिम समय की तरफ ना 68-69, तब बाबा का अवस्था भी बढ़ती जा रही थी, और बच्चे भी बहुत बढ़ गए थे, तो कई बार बाबा दृष्टि ही, और बस दृष्टि दी तुरंत आत्मा जैसे विदेही हो जाती। एक तो बाबा ने ये पक्का किया था, और साथ ही साथ दूसरा ये साक्षीपन, हम चाहते तो हैं हम सब साक्षियों के पार्ट बजाएं, बाबा से सदा साथीपन का अनुभव करें, जो बाबा ने कहा है सदा साथी को साथ रखो, उसकी छत्र छाया में रहो, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक तो ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा और सब आत्माएं, सबका पार्ट अलग है। और दूसरी बात जो बाबा ने पक्की की थी, जो बाबा व्यक्त मुरली में भी कहता है ना, क्या कहता है, दरबार लगाओ अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ। और बाबा ऐसे दरबार लगाता था, अभी तक भी वो लेटर भी यहाँ मौजूद है, जो बाबा ने अपने मन को एड्रेस करके लिखा था। जब ज्ञान में आए ना, तो बाबा ने कहा हे मन, बाबा जैसे मन से बात कर रहा है, हे मन तूने मुझे बहुत भटकाया है, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि मुझ आत्मा राजा को तूने नचा दिया, भटकाता रहा, मैं आत्मा राजा कमजोर हो गई, लेकिन तू बलशाली हो गया, मैं तेरे कहने पर पीछे पीछे भटकता रहा, चलता रहा, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। ऐसी बाबा बुद्धि से बात कर रहे हैं कि हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर उसके पीछे पीछे चलती रही और तुम दोनों ने मुझ आत्मा राजा को कमजोर बना दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कहता हूँ कि हे बुद्धि, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। और यही बात बाबा अभी थोड़े दिन पहले भी मुरली चलाई थी ना, जो बाबा ने मन के ऊपर, कैसे मन जीते जगत जीत। तो हमारा सारा पुरुषार्थ जो हो रहा है ना, वो मन को जीतने का ही हो रहा है। अभी तक भी अलग अलग समय हो गया इतने वर्ष, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि हमने 100% मन को जीत लिया है। मन मेरे कहने पर, मन कई बार न चाहते हुए भी वो संकल्प कर लेता है जो हमारी कर्मातीत अवस्था की तरफ ले जाने में सहायक नहीं होते हैं। बहुत बात। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के, हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा है, मन जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के ऊपर। गीता में भी कहा है मन मना भाव, कोई तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। और इस कारण से ना, ये मन का ही जो पुरुषार्थ हो रहा है, इसमें ही ये केवल जो सारे दिन की बातें आती हैं, जब कोई किसी को भी देखते हैं ना, परिवार के अंदर कोई भी बात आती है, तो इसलिए एक तो बाबा ने यही कहा है, भाई जो भी है जैसे है, ये मेरा परिवार है, सब संबंध में आए हैं, मेरा बाबा, मेरा परिवार, इस परिवार के साथ मुझे सतयुग के आदि से रहना है। इसीलिए लौकिक में भी मैनेजमेंट में बोलते हैं कि जब दूसरों से डील करो तो मतलब यूज योर हार्ट, दिल की बात, और जब अपने को वो करो तो दिमाग से यूज करो। अर्थात कहने का भाव क्या है, अपने प्रति आप स्ट्रिक्ट रहो और दूसरों से ना प्रेम आदर सत्कार, जो बाबा ने बोला है ना, जितनी हमारा भावनाकृत बात होगी उतना दूसरे हमारे और हमारे बाबा के और निकट आएंगे। इसीलिए ये जो अपने बात बाबा की ये देखी है। एक दूसरी बात, बाबा का ना जितना जितना मन के ऊपर हमारा वश होता जाता है जीत, क्योंकि जितना भी हमारा पुरुषार्थ है, साथीपन हो, साक्षीपन हो, स्वस्थिति हो, योग हो, ज्ञान धारणाएं, सब कुछ हमारे मन के ऊपर, विचारों के ऊपर निर्भर करती है। विचार अगर हमारे कंट्रोल में आ गए, सब चीज कंट्रोल में आ गई। इसीलिए मन के ऊपर ही भक्ति मार्ग में भी बहुत मन के ऊपर कहा हुआ है। और धीरे धीरे उससे फायदा क्या होगा, पता कैसे चलेगा कि मन मेरे कंट्रोल में आता जा रहा है। बाबा को हम देखते थे 17 और 18 जनवरी को, जब बाबा कर्मातीत अवस्था के बिल्कुल निकट थे, हमें यहाँ पर रहकर बाबा की उस स्थिति को देखने का मौका मिला। हमने देखा, पहले तो जब जाते थे बाबा को समाचार सुनाते थे, बाबा सुनते थे और उसका समाधान देते थे, लेकिन अंतिम दिनों में हमने क्या देखा, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा जरा सा दृष्टि देंगे ऐसे थोड़ा सा, और बस दृष्टि देते ही बाबा कहेंगे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी बाबा मन के अंदर जो प्रश्न है वो भी बता देते थे और फिर प्रश्न का समाधान भी देते थे। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, 6-7 बार जब ऐसा हुआ, बड़ा आश्चर्य होता था। बाबा के सम्मुख गए, बाबा से ये प्रश्न पूछेंगे, ये बात पूछेंगे, लेकिन मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बस बाबा ने दृष्टि दी और मन के भाव को पढ़ के तुरंत ही प्रश्न भी बता दिया, समाधान भी हो गया। तो हमने बड़ी दीदी, मनमोहनी दीदी होते थे, उनसे पूछा, बड़ी दीदी हम कहा करते थे, जो मन, जिनकी स्मृति में हमारा मनमोहनी वन भी बना हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात दीदी ने बताई थी कि देखो, जब जो कोई आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, जिसने अपने मन के ऊपर, विचारों के ऊपर पूरा नियंत्रण कर लिया है ना, वो दूसरे के विचारों को सहज ही पढ़ सकता है और उन विचारों को जो शुभ विचार है उनकी पूर्ति भी कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मतलब पानी अगर बिल्कुल साफ है निर्मल है हम उसमें अपनी छवि देख सकते हैं, लेकिन पानी में अगर एक छोटा सा पत्थर भी फेंक दो उसमें लहरें अगर पैदा होंगी तो हमें उतनी स्पष्ट अपनी छवि दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ऐसे ये जो विचार है ना, ये जैसे एक छोटा कंकड़ है, और हमारे मन में कोई भी विचार अगर आया तो हम दूसरे के विचारों को नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अपने विचार उसके विचारों से मिक्स हो जाएंगे। इसलिए अगर दूसरे के विचारों को हमें समझ करके उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना है, इसीलिए बाबा कहते हैं अब आप बच्चों को क्या बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या। हमारे अंदर ना कोई भी ऐसी इच्छा न हो, भले शुभ इच्छा होती है, सेवा की इच्छा होती है, ज्ञान योग वो ठीक है, लेकिन वो इच्छा ऐसा न हो कि हमारे मन के विचारों को वो झंझनाती रहे, बार बार वो बात याद आती रहे, नहीं। बस मन हमारा इच्छा मात्रम अविद्या जितना हो जाएगा हम दूसरे संसार की आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और अंत समय में ये पार्ट चलना है कि बहुत आत्मा आएंगी हमारे सम्मुख। बाबा ने कहा है रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, दुखी अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति का अनुभव करती हुई जाए। और ऐसा कब होगा? अंत समय में, कि जब ऐसी आत्माएं आएंगी और हमारे सम्मुख आते ही वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव करेंगी ना, तभी वो हमें अपना इष्ट देव मानेंगे। क्योंकि भगवान के सम्मुख जाने से, इष्ट देव के सम्मुख जाने से हमारी इच्छाओं की, जो भी भक्त की इच्छा होती है वो पूर्ण होती है, तब वो समझता है हाँ मेरी इस इच्छा को मेरे इष्ट देव ने पूरा किया। बाबा का भी जीवन कहानी पढ़ी है ना हमने, हाँ क्या यज्ञ के शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो एक विरोध भी हुआ होता था यज्ञ में, तो एक सरदार जी आए थे, सुना होगा कहानी में, वो छुरा लेकर के आए थे और आज हम बाबा को इससे नुकसान पहुंचाएंगे, मारेंगे, क्योंकि वो ज्ञान के विरुद्ध थे। लेकिन बस बाबा के कमरे में भी गए, बाबा से बातें भी करी, एकांत भी था, लेकिन जब उन्होंने ये अपना छुरा निकाला तो क्या हुआ, उन्हें किसका साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव जी का। भले बाबा की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा है, लेकिन शिव बाबा हमारे द्वारा आत्माओं को जो साक्षात्कार कराएगा वो कराएगा जिसमें उन आत्माओं की भावना होगी। अंत में कोई राम का भक्त आया, उसे हमारे द्वारा से राम का साक्षात्कार होगा। कोई देवी का भक्त आया, देवी का साक्षात्कार होगा। गणेश का, हनुमान का, जो भी जिस इष्ट देव को मानता होगा उसको हमारे द्वारा बाबा वो साक्षात्कार कराएगा। और जब हमारे द्वारा उसे वो साक्षात्कार होगा तब क्या होगा? तभी उसकी भावना बैठेगी, क्योंकि वो जिसको मानता है उसके साक्षात्कार से उसे भावना बैठेगी, और तभी से बस हमें वो समझेगा ये मेरे इष्ट देव हैं, इनका, इनसे मुझे भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। जैसे उस समय आया बाबा से उसे गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ, बस उसकी आंख से आंसू बहने लगे, अरे मैं क्या करने जा रहा था, हे गुरु जी मैं आपको मारने जा रहा था, क्योंकि गुरु नानक देव जी में उसकी भावना थी। और बस बाबा के सामने निकाल के छुरा रख दिया और बस बाबा से माफी मांगी और उसके बाद वो चला गया, मैं क्या काम करने जा रहा था। तो बाबा ने कहा है जो बाबा के द्वारा आदि में पार्ट चला है, हम सब भी ब्रह्मा वत्स है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तो हमारे द्वारा भी ये सब पार्ट चलने हैं, पूरे संसार की आत्माओं को ये साक्षात्कार होने हैं। लेकिन कब होंगे? जब हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, हमारा मन के संकल्पों के ऊपर विजय होगी। और वो इस भावना से होगी जो आज का विषय है ना, जब साथीपन, सदा हमें बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ, बाबा की मैं मस्तक मणि हूँ, मैं विजय रतन हूँ, बाबा मैं वो कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, कल्प पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी आप मुझे विजयी बना रहे हो, कल्प कल्प आपके द्वारा मैं विजयी आत्मा बनूंगी, मैं बाबा आपके दिल तक नशीन, बाबा का हाथ और साथ का अनुभव, साथीपन का भी अनुभव हो, और जब परिवार में डील करते हैं सबके सामने तो साक्षीपन की स्थिति हो। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये आत्मा भी अपना पार्ट प्ले कर रही है, बस साथ ही साथ जो भी महान आत्माएं होके गई है ना, उन महान आत्माओं का एक गुण विशेष होता है। कौन सा गुण? याद करो, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, मदर टेरेसा है, या जो भी धर्म पिता है वगैरह होके गए, उनका विशेष गुण है क्षमा करने का। हम व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते, कोई भी अवगुण होता है उसको दिल में रख लेते हैं, बार बार वही बात याद आती है, इस कारण से वो चीज हमें चुभोती रहती है, हमें ही दुख देती रहती है। बस बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर देगा। तो हम अपने को ये देखते चले, मैं कमजोर हूँ या महावीर हूँ। अगर दूसरे की कमी कमजोरी को देख के मैं बस उसे क्षमा कर देता हूँ, अपने दिल में उसका स्थान नहीं देता हूँ, कोई उसका पर चिंतन नहीं, पर निंदा नहीं, कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं महावीर हूँ, तभी मैं साक्षीपन की स्थिति में मैं आत्मा सहज रह सकती हूँ। तो एक तो ये हम अपने अंदर गुण धारण करें, क्योंकि हरेक के अंदर जब से व्यक्ति पैदा होता है दो शक्तियां हरेक में विशेष होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। ये हरेक में होती है, लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो हमें बरसों तक याद रहती है। ये विडंबना, ये हमारी कमजोरी का प्रतीक है। तो इस कारण से बाबा ने कहा है, एक तो ये करो, दूसरे की कमी को अपनी कमी समझो। ये परिवार मेरा है, संगठन है, किला है, मैं किसी भी कीमत पर इस किले को कमजोर नहीं होने दूंगा। ये हमारा जो यज्ञ का किला है, ये हमारे अंदर रहे। दूसरे की कमी दूसरे की नहीं है, वो मेरी कमी है, मुझे अपनी कमी वो महसूस हो तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और बाबा में क्या देखा, इसका भी अभ्यास पक्का कब होगा कि एक सेकंड में हमें शरीर में आने का अभ्यास हो, एक सेकंड में शरीर से जाने का। हम लोग देखते थे, पार्टियां मिलती थी, बाबा के पास आते थे, बस एक पार्टी से बाबा मिले, दूसरी पार्टी में थोड़ा समय है तो बाबा उतनी देर अकेले बैठते थे, बस आंख खुली है, बाबा बैठे हैं बिल्कुल जैसे खोए हुए। दूसरी पार्टी का समय हुआ, ब्राह्मणी आई पार्टी को लेके, बस बाबा बाबा कहते थे तो बाबा को कई बार थोड़ा जैसे झटका सा लगता था। है बच्ची, क्या कहा? आंख खुले हैं, यहीं पर हैं, लेकिन बुद्धि से बाबा जैसे सूक्ष्म वतन, परम धाम, जो भी हमारे पुरुषार्थ की चीजें वहां होते थे। फिर जब बुलाते थे तो बाबा जैसे आते थे, अच्छा अच्छा पार्टी आई, आओ आओ बैठो बच्चों बैठो, और फिर बाबा जैसे शरीर में पुनः लौट करके कार्य व्यवहार करते थे। और जब पार्टी का मिलना पूरा हुआ उसके बाद फिर बाबा जैसे एक सेकंड में ही देह से न्यारे, एक सेकंड में ही देह के बाहर में आ करके कार्य व्यवहार जो करना होता था वो करते थे। तो ये अभ्यास भी हमें जितना पक्का होता जाएगा, ये हमें अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ, जो बाबा को देखा ना, वो ले जाता जाएगा। और ये हमें बस साथी पन की तो स्मृति रहेगी, तभी हम अपने वो हो सकेंगे विदेही, और साथ ही साथ साक्षीपन में ये मदद करेगा। और अंतिम दिनों में क्या देखा, मैं 18 जनवरी की आपको एक घटना बताता हूँ। जब बाबा, जिस दिन अंतिम दिन था साकार ब्रह्मा बाबा का, तो बाबा उस दिन सुबह बाबा ने क्लास में आके सिर्फ योग कराया था और मुरली नहीं चलाई थी, सब में शक्ति भरी थी। और सुबह क्लास के बाद बाबा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए थे। सारे दिन बाबा ने काम किए, पत्र व्यवहार आदि सब। नॉर्मली रात को 9 बजे क्लास होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने बस लगभग 7:30 बजे ही ना एक भाई को बुला के कहा आज बाबा जल्दी क्लास कराए, सबको इन्फॉर्म कर दो। तो बाहर हिस्ट्री हॉल जो है, बाहर एक घंटे रखा रहता था जैसे स्कूल में होता है, तो उस भाई ने वो बजा करके सब इकट्ठे हुए तो सबको इन्फॉर्म कर दिया आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा। देखो कर्मातीत अवस्था में आत्मा होती है ना, तो कैसे उसको भान होता है, बस आज बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई, बाबा को ये था आज मैं अभी मुरली चलाऊं। और ये बाबा को बस आभास, कर्मातीत अवस्था में सब घटनाओं का आभास होने लगता है। उसके बाद सब इकट्ठे हो गए और फिर बाबा क्लास में आए। उस दिन बाबा का रूप बिल्कुल ऐसा अव्यक्त फरिश्ता, जैसे लाइट में ही कोई चले आ रहे हैं। वैसे भी बाबा का तो एकदम पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, बिल्कुल मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, जो किसी को भी ना, क्योंकि बाहर का स्वरूप भी और अंदर का स्वरूप इतना, और कर्मातीत अवस्था का दिन था वो तो बाबा का, बस आत्मा भी संपूर्ण पवित्र बन चुकी थी और आत्मा के साथ साथ इन शरीर के 5 तत्वों को भी बाबा ने पवित्र बना लिया था। बस बाबा आए, मुरली चलाई, और उस दिन की मुरली की एक विशेषता सबसे बड़ी जो हमें नोटिस हुई वो ये थी कि वैसे बाबा को कई बार खांसी आती थी, हाँ कई बार बाबा को गला साफ करना पड़ता था, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी न गला साफ करना पड़ा न खांसी आई, जो भी इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत स्थिति होती है तो शरीर के कर्म भोग के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है, फिर शरीर के कर्म भोग व्याधि कोई भी शरीर को परेशान नहीं करती है। और उस दिन पूरा बाबा की मुरली जो चली 30 मिनट तक, बिल्कुल ऐसी फ्लॉलेस, इतने फास्ट, इतनी अच्छी मुरली, बस देखते ही बनता था। वैसे बाबा हिस्ट्री हॉल में तो आप लोग गए होंगे, जो नए होंगे न गए हों फिर भी वो भी जाएंगे देखेंगे। बस संदली 3 रखी हुई है हिस्ट्री हॉल में, पास में कृष्ण का ट्रांसलाइट का लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा रहता था। तो बाबा हमेशा अक्सर कहते हैं मुरली में भी ना, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, हमें कौन मिला है, हम क्या बन रहे हैं। बच्चों को खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, मालूम है हा? ये सिंधी शब्द है। फिर एक बार जब हम वहां थे तो बाबा ने कहा बच्चे मालूम है खग्गी कैसे मारते हैं, तो मैंने कहा नहीं बाबा, हम लोग वहां बैठे, तो बाबा ने करके दिखाया, मैं भी यहाँ आपको दिखाता हूँ। खुशी इतनी हो ना, अरे हम ये बनने वाले हैं, वो ट्रांसलाइट का चित्र था कृष्ण का, ओ कल हम ये, ओ वाह ऐसे बाबा ना, ओ हम कल ये बनने वाले हैं लक्ष्मी नारायण कृष्ण ट्रांसलाइट के चित्र, इतनी बाबा के चेहरे पर ना खुशी की झलक। और ऐसा इतना वृद्ध शरीर, खांसी भी आती थी, कष्ट होता था, लेकिन आने वाले समय के उसकी खुशी में ना, इस समय की पूरी व्याधि दुख वो सब जैसे भूल जाता था। बाबा यही चाहता है कि इस समय संगम युग है, अनेक अनेक जन्मों के विकर्मों को भस्म कर रहे हैं, हिसाब किताब चुकतु हो रहे हैं, कुछ व्याधियां आएंगी शरीर की, संबंधों की, कई प्रकार के बातें आएंगी, लेकिन उससे हमें हमारी खुशी ना जाए, हम जो बन रहे हैं वो खुशी इतनी हो कि इस जन्म के गम को खा जाए, इतनी खुशी हो। एक तो बाबा ये चाहते, वो बाबा के चेहरे से प्रत्यक्ष होती थी। फिर उस दिन बाबा ने मुरली चलाई और देखो बाबा के मन में ना कितने संकल्पों के ऊपर बाबा की विजय हो गई। हम सामने बैठे हुए थे 18 जनवरी 1969 की बात, बाबा मुरली चला रहे हैं, सुनते सुनते ही हमारे मन में एक संकल्प आया, क्या ही अच्छा हो बाबा अगर हमारा नाम लेकर और कुछ और गाइडलाइन दे दे कि ऐसा करो बच्चे ऐसा, तो और हमारा खुशी का पारा चढ़ जाए। होता है ना, अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो भले सब मुरली सुनते हैं लेकिन फिर भी दिल होती है ना कि भाई चलो क्या बढ़िया हो, स्टेज पर जाने को मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि पर्सनल मिल जाए। ऐसी जब बाबा साकार में थे ना तो बाबा भी खींचता था सबको, इतना चुंबकीय आकर्षण था कि बाबा हमारे लिए कुछ बोले। और देखो कर्मातीत अवस्था जब आत्मा की होती है तो अपने मन में कोई संकल्प नहीं, जैसा मैंने बताया तुरंत ही संकल्प बाबा तक पहुंचा होगा और तुरंत ही बस अगले ही क्षण बाबा ने मुरली में नाम लेकर के कई महावाक्य उच्चार दिए। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण है और ये हम सबको भी प्राप्त करनी है ये स्थिति। इसीलिए ये स्थिति प्राप्त करने के लिए एक तो अपने संकल्पों के ऊपर और विजय प्राप्त करें, साथ ही साथ उस दिन एक विशेष बात और, मुरली चला के बाबा संधली से खड़े हुए, हर एक को दृष्टि देने लगे। सामने दादी प्रकाशमणि जी भी बैठे थे, उनको विशेष बाबा दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने एक कदम आगे चले, फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा रुक करके फिर हर एक को, एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी। उस दिन बाबा को ये हो कि आज तो मेरा ये अंतिम साकार मिलन है, शिव बाबा को ये शायद वो बात हो रही होगी कि ब्रह्मा तन के द्वारा आज तो ये अंतिम मिलन है, फिर तो ये ब्रह्मा आज शरीर छोड़ने वाला है, कि शिव बाबा की बात। और फिर बस बाबा दृष्टि ही देते, फिर बाबा एक कदम आगे चले, फिर बाबा दृष्टि देने लगे। तो ऐसे ही उस हिस्ट्री हॉल में संधली से गेट तक जाते जाते बाबा चार पांच बार रुके और हर बार बस बाबा ऐसे दृष्टि, बस बच्चों को आज मैं सब प्यार, इतना बाबा के नैनों से प्यार झलक रहा था, स्नेह और शक्ति लुट जैसे बाबा लुटा रहा है, और बस जो बच्चे को जो आवश्यकता हो वो दे। फिर बाबा दरवाजे पर खड़े होके, अच्छा बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट, और अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, ऐसे बाबा हाथ हिला के चले गए। तो देखो बाबा वहां से गए और फिर तो हम सब ने सुना ही है, कमरे में जाके दादी जी के हाथ में हाथ देते हुए बाबा ने जैसे इस शरीर से विदाई ली ब्रह्मा बाबा ने। लेकिन कैसे बाबा ने प्रकृति के पांच तत्वों को भी पावन कर दिया ये पता चला। और दो तीन दिन, क्योंकि 18 जनवरी को शरीर छोड़ा बाबा ने, 18 की रात शरीर रखा रहा, 19 को दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। हमें याद है हम यहाँ थे, बाबा को जब स्नान कराया हम लोगों ने ना, तो शरीर इतना फ्लेक्सिबल, ऐसे नहीं तो मृत्यु के बाद व्यक्ति का शरीर थोड़ा अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। हमने बहुत डॉक्टरों से पूछा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था बाबा को, कोई दवाई का लेप नहीं लगाया गया, कुछ नहीं है। लेकिन शरीर के ये पांच तत्वों से बना हुआ हमारा जो शरीर है, इनको भी बाबा ने ऐसा पावन कर लिया था योग बल के द्वारा कि 3 दिन तक, 65-70 घंटे तक वो शरीर रखा रहा, लेकिन वैसा ही शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल, वैसा ही चमकता हुआ शरीर, कोई कालापन नहीं हुआ, कोई उसमें दुर्गंध नहीं आई, कुछ नहीं। और बस लगता था जैसे बाबा सो रहे हैं और अभी उठ के बाबा जैसे हमेशा आओ बच्चे ऐसे ही बाबा हाथ फैला देंगे और हम सब बाबा की बाहों में चले जाएंगे, ऐसा अनुभव हो रहा था। तो ये जो है ये पांच तत्व जो बाबा कहता है प्रकृति के तत्वों को भी आप बच्चों को पावन करना है, तो ये प्रकृति के तत्वों को भी पावन बाबा ने करके दिखाया। और किस प्रकार से, ये शरीर भी हमारा पांच तत्वों से बना है, और जितना जितना हम प्रकृति के तत्वों को पावन करते जाएंगे, उनके गुणों को धारण करते हुए ना, उतना उतना हम संपूर्णता की तरफ बढ़ते जाएंगे। कैसे? प्रकृति के तत्वों को भी पावन करना है, प्रकृति के एक एक तत्व का गुण ले लेना है। मानो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है कौन सा? पृथ्वी का दाता है पृथ्वी। एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। हम भी बस दाता बन के ना रहे, हर एक को शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, आदर, सब जितनी भी हम दिव्य गुणों की सुगंधि देते रहेंगे, उतना उतना हम पृथ्वी के तत्व के गुण को धारण करते चलेंगे। उसका फायदा क्या होगा? पृथ्वी का और गुण है सहनशीलता भी। जितना सहनशीलता का गुण, दातापन का गुण धारण करते चलेंगे, तो ये पृथ्वी जो है हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। जितना भी धरती हिलेगी, भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, अर्थक्वेक होंगे, लेकिन पृथ्वी को हमने अपना मित्र बना लिया, पृथ्वी के गुण धारण करके पृथ्वी अंत में हमें संपूर्ण बनने में मदद करेगी। जल है, जल का कौन सा गुण है? जल हर एक जगह एडजस्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल है। अभी ये गिलास में लिया हुआ है, गिलास में आ गया, थाली में लोगे थाली में सेट हो जाएगा, कटोरी में लोगे कटोरी में सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा भी संस्कार ऐसे हो, हम हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चलते रहे। ब्रह्मा बाबा का देखा, बस बच्चों के, जवानों के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, बच्चों के साथ, इतना बाबा का ना फ्लेक्सिबल था। हर एक के साथ हम इतने अपने संस्कारों को मैच करें, हमें ये कहने का मौका ना मिले भाई इनके संस्कार करें इनके साथ बड़ा मुश्किल है, नहीं है। हमारे इतने हो, हम उन गुणों को करते चले। ऐसे ही प्रकृति के जितने जितने हम तत्वों को वो करते चलेंगे, पवन की तरह, वायु की तरह हम सदा हल्के रहें, कभी भारीपन हमारी स्थिति में ना आए, कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई अपमान हो जाए, कुछ बात, हम सदा हल्के रहें, उड़ते रहें और उड़ाते रहें। इसी तरह और अग्नि का जो गुण है, बस जैसे आपको बताया, अग्नि का गुण है रूप परिवर्तन करने का। सूर्य का जो गुण है, पांच तत्व है, तो ऐसे ही हमारे भी योग अग्नि ऐसी जली रहे, जो भी अशांत आत्मा आए, अशांति के गुण को हम शांति में परिवर्तित करते, दुखी को सुखी में, लाइक दैट। और अंतिम कौन सा तत्व है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश की तरह जितनी विशालता धारण करते चलेंगे, बाबा कहता है विशाल हृदय बनो, फिराक दिल बनो। तो जितना जितना फिराक दिल होते जाएंगे, उतना उतना बस किसी से भी हमारा ना कोई भी किसी की कमी कमजोरी को न करे, बस जितना जितना ये सब धारण करते चलेंगे, ये साथीपन और साक्षीपन की स्टेज अपने आप हमारे अंदर आती जाएगी, संबंधों में सभी मधुरता आती जाएगी, और हम सहजी बाबा की तरह अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ले। ओम शांति।